रामानुजम सीता।
आप सब बोले
भरतम भरतानुजम सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः।
हम प्रणाम करते हैं भगवान श्री राम, श्रीमती सीता देवी, भगवान के भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, साथ ही साथ उनके मित्र श्री सुग्रीव और उनके परम भक्त वायु पुत्र हनुमान जी को बारंबार प्रणाम। हरे कृष्ण। थोड़ा आवाज बढ़ा देना। तो आप सबने अभी दयाल चंद्र प्रभु से सुना जीवन का उद्देश्य, किस प्रकार हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो अब थोड़ी सी चर्चा रामायण पर भी करें। हम सबको कहते हैं कि अपना मोबाइल बंद रखना चाहिए, कम से कम साइलेंट पे रखें, ताकि जब भगवान की कथा हो रही हो तो दूसरी और कोई चीज़ हमें याद नहीं। अगर हम भगवान की कथा के समय अपने मोबाइल पर बात करते हैं तो हम ये दिखला रहे हैं कि भगवान की कथा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारा कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे हनुमान जी कूद चुके हैं, लंका पहुंच गए हैं। लंका पहुंचकर लंकिनी को एक थप्पड़ मारा। लंकिनी ने जैसे ही थप्पड़ पड़ा, स्वागत किया हनुमान जी का, आइए बहुत स्वागत है लंका में आपका। ब्रह्मा जी ने बताया था मुझे कि जिस दिन एक वानर आकर थप्पड़ मारेगा तुम्हें, जान लेना कि लंका समाप्त होने वाली है, रावण का अंत आ गया है, सारे राक्षस कुल का नाश होगा। हनुमान जी प्रवेश करते हैं। आज चर्चा करेंगे सीता की खोज की। हनुमान जी रात्रि के समय प्रवेश करते हैं, कई स्थानों में जाते हैं सीता को ढूंढने के लिए, मिलती नहीं है सीता। रावण के महल में प्रवेश करते हैं। रावण के महल में उन्हें देखते हैं कि बहुत आलीशान महल है। धीरे धीरे अंदर जाते हैं, रावण के कमरे में पहुंच जाते हैं। आपको याद होगा कि हनुमान जी बड़े छोटे से होकर गए थे। उन्होंने देखा कि रावण सो रहा है, बड़ी बड़ी भुजाएं उसकी, और आराम से सो रहा था। आसपास बड़ी स्त्रियां थीं, किसी के हाथ में चामर था, किसी के हाथ में वीणा थी, किसी के हाथ में अन्य वाद्य थे, अर्थात सोने से पहले बड़े आराम से संगीत सुनाकर सुलाया गया था उसको, जैसे बच्चे को लोरी सुनाई जाती है। हनुमान जी ने देखा, दरअसल उस समय जब रावण को देखा, बहुत सुंदर था रावण। हाँ, हम लोग तो जब रावण का चित्र बनाते हैं तो बड़ा कुरूप बनाते हैं। आप में से जो उत्तर भारत से हैं, रामलीला देखी होगी बचपन में आप सबने, अभी भी कभी कभी जाएं तो रामलीला होती है। तो रावण का पुतला बनाया जाता है। उत्तर भारत में हर शहर में रामलीला मैदान है जहाँ रामलीला होती है। 8-10 दिन रामलीला चलती है, पूरा रामचंद्र जी की लीला कथा होती है ड्रामा नाटक के द्वारा, और अंत में जला दिया जाता है रावण को। तो जब भी रावण का बनाया जाता है चेहरा, बड़ा कुरूप बनाया जाता है, बड़ा सुंदर नहीं, लेकिन रावण बहुत सुंदर था। हनुमान जी ने जब देखा रावण को सो रहा है ऐसे, हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। मानो हनुमान जी सोच रहे हो कि अगर ये भक्त बन जाए तो कितना अच्छा है, इतना सुंदर, बहुत सुंदर था रावण। लेकिन जब उसका हृदय में काम वासना जागृत होती थी तो उसका चेहरा बड़ा कुरूप हो जाता था। ये प्रमाण है कि व्यक्ति अपने गुणों से सुंदर होता है। तो रावण वहां सो रहा है, हनुमान जी और इधर उधर, हनुमान जी ने बहुत कुछ देखा, बड़े विस्तार से वाल्मीकि मुनि ने वर्णन किया है, छत्र था, अन्य क्या क्या चीजें थी हनुमान जी ने देखी। फिर हनुमान जी और आगे चलने लगे, बड़ी सारी स्त्रियां वहां पर सो रही हैं ऐसे ही, और सबके मुख से शराब की बदबू आ रही है, मांस की बदबू आ रही है। अब ये हमारे हनुमान जी ब्रह्मचारी भगवान के शुद्ध भक्त और ढूंढ रहे हैं रात्रि के समय स्त्रियों को, देख रहे हैं। देखते देखते फिर एक आसन पर, एक बिस्तर पर पहुंचे जहां पर मंदोदरी सो रही थी। हनुमान जी ने मंदोदरी को देखा, बहुत सुंदर थी मंदोदरी। जैसे ही हनुमान जी ने मंदोदरी को देखा, हनुमान जी को लगा यही सीता है, इतनी सुंदर तो सीता ही हो सकती है। हनुमान जी ने देखा तो था नहीं सीता को, और अगर देखा भी होता तो भी शायद धोखा खा जाते, क्योंकि रामायण के एक संस्करण में लिखा है, ये वाल्मीकि जी नहीं कहते, तुलसीदास जी नहीं कहते, अध्यात्म रामायण में नहीं है, लेकिन एक रामायण का किसी संस्करण में लिखा है कि दरअसल सीता देवी मंदोदरी की पुत्री थी, और जब उनका जन्म हुआ तो सारे जो ज्योतिषी थे उन्होंने कहा कि अरे अरे ये पुत्री तो तुम्हारे नाश का कारण बनेगी रावण, तो उसने उठाकर फेंक दिया था पुत्री को, ऐसे बताया जाता। तो खैर मंदोदरी बहुत सुंदर थी, हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी ने कहा यही होगी सीता, और हनुमान जी बहुत खुश हो गए। आप सोचिए, पिछले कई महीनों से जब श्री राम से मिले थे चतुर्मास के पहले, अब तो चतुर्मास बीत गए, उसके बाद करीब एक महीना बीत गया, तो इतने महीनों से जो इंतजार कर रहे थे सीता को ढूंढने का, अब सीता मिल गई तो हनुमान जी बहुत खुश हो गए। और जब एक वानर खुश होता है तो अपनी खुशी कैसे प्रकट करता है? हम लोग जब खुश होते हैं तो हमारे खुशी प्रकट करने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग खुशी में पीते हैं जाकर, है ना, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो कहते हैं गम है तो भी पीना है, खुशी है तो भी पीना है, मतलब एक बहाना चाहिए पीने के। तो हम लोग अलग अलग तरह से अपनी खुशी प्रकट करते हैं। जब भक्त प्रसन्न होते हैं तो वो कीर्तन करते हैं, भगवान के मंदिर आते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, ये उनकी प्रसन्नता को प्रकट करने। अब वानर हैं हनुमान जी, अपने वानर के स्वभाव को भूले नहीं, तो जब प्रसन्न हुए तो क्या किया, वहां पर जो खंभे थे उसके ऊपर चढ़ने लगे और उतरने लगे, अपनी पूंछ पटक पटक कर बहुत उछलने लगे और अपनी ही पूंछ को लेकर चूमने लगे, वाह सीता मिल गई, सीता मिल गई। भूल गए कि ये सीता नहीं है अभी तो। कभी कभी हमारे जीवन में हम लोग इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि सत्यता को देख नहीं पाते हैं, सत्य क्या है, अंधे हो जाते हैं प्रसन्नता से। हनुमान जी इतने प्रसन्न हो गए, सीता मिल गई, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, बस अब तो सीता मिल गई। फिर अचानक उनको ध्यान आया, उन्होंने बड़े ध्यान से देखा, मंदोदरी के मुख से शराब की बदबू, मदिरा की बदबू आ रही है, मंदोदरी ऐसे आराम से सो रही है, कोई चिंता नहीं। हनुमान जी ने सोचा ये सीता नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि सीता कभी दूसरे पुरुष के साथ रहकर इतने आराम से नहीं सोएंगी, वो तो रामचंद्र जी से अलग रहकर नींद ही नहीं आएगी उनको, उनकी आंखों में नींद कैसे होगी जब श्री राम से अलग हैं। इसलिए ये सीता नहीं हो सकती, कितने आराम से ये सो रही है, तो फिर ये सीता नहीं। फिर से ढूंढने लगे। अब हनुमान जी देखिए, यहां पर हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखते हैं कि हनुमान जी ने कैसे सोचा कि वो सीता नहीं है, उसको देखकर, उसके आचरण को देखकर, उसके वेश को देखकर हनुमान जी जान गए सीता नहीं। इसीलिए व्यक्ति अपने आचरण से पहचाना जाता है, व्यक्ति अपने गुणों से पहचाना जाता है, व्यक्ति अपने चरित्र से पहचाना जाता है। व्यक्ति की पहचान बाहरी कपड़ों से नहीं होती है, ये तो केवल दिखावा है। कोई ऐसे भगवे वस्त्र पहनकर बैठ जाने से भक्त नहीं बनता। भारत में कितने लोग हैं जो भगवे वस्त्र धारण करते हैं लेकिन केवल व्यवसायी हैं, धन कमाते हैं, भगवान की भक्ति हृदय में नहीं है। इसलिए व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से होती है। और चरित्र को कैसे पहचानना चाहिए? भगवान के, भगवान की बात अलग है लेकिन भक्त दूसरे लोगों के चरित्र को हम पहचानने में इस तरह पहचान सकते हैं कि वो किस तरह सबके सामने आचरण करता है, ये दरअसल उसके चरित्र की पहचान नहीं है। वो अकेले में कैसा आचरण करता है ये उसके चरित्र की पहचान है। क्योंकि पब्लिक में सबके सामने तो हम लोग बहुत अच्छे रहते हैं लेकिन जब अकेले में हो तब हमारा आचरण हमारे चरित्र को दर्शाता है। इसीलिए जान लीजिए, मंदोदरी के कपड़ों को देखकर, मंदोदरी के व्यवहार को देखकर हनुमान जी जान गए। जिस समय श्री रामचंद्र ने वनवास लिया, निषाद राज के पास आए, गुहा के पास, और उन्होंने कहा आप आइए हमारे साथ रहिए, आप चिंता नहीं कीजिए। रामचंद्र जी ने कहा नहीं, मैंने एक वनवासी का वेश, वनवासी का निवास और वनवासी का आहार स्वीकार किया है, अब मैं शहर में प्रवेश नहीं करूंगा। तो ये तीन चीजें हमारे चरित्र को, हमारे आचरण को, हमारे व्यक्तित्व को दर्शाती हैं। हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हमारा वेश कैसा है, हमारा आहार कैसा है, हमारा निवास कैसा है, ये हमारी चेतना पर प्रभाव करता है। आपका निवास, कभी कभी हम किसी के घर में जाते हैं तो घर में प्रवेश करते ही शेर का चित्र दिखाई देता है, कुत्ते का चित्र दिखाई देता है, या फिर कुत्ता भागकर आता है भौंकता हुआ, पता नहीं वो अपने हिसाब से स्वागत कर रहा है या गुस्सा कर रहा है, समझ नहीं आता, वो तो भौंकता है। निवास को कैसा रखना चाहिए? निवास को ऐसे रखना चाहिए कि हर समय भगवान का स्मरण हो सके। निवास को जैसा रखेंगे वैसी चेतना बनेगी। आप सोचिए, आप घर के बाहर जाते हुए, अंदर आते हुए, रहते हुए अगर शेर को देख रहे हैं, कुत्तों को देख रहे हैं तो किस प्रकार की चेतना आपकी बनेगी। वही दूसरी ओर अगर चारों ओर भगवान के चित्र हैं, भगवान की कथा चल रही है, अगर आप घर में प्रवेश करते हैं, श्री कृष्ण का चित्र देखते हैं, रामचंद्र जी का चित्र देखते हैं, और फिर जब अंदर जाते हैं तो भजन सुनाई देता है, गोलोक वृंदावन हो जाता है। इसीलिए घर को मंदिर बनाइए। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो कम से कम घर को मंदिर बनाइए। और घर को मंदिर बनाना ये हमारे ऊपर है, हम किस तरह के चित्र लगाएं, किस तरह की बातें करें, किस तरह की चीजों को देखें। ये जान लीजिए कि हमारे मन पर ये सारी चीजें प्रभाव करती हैं। हम क्या खाते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, ये सारी चीजें हमारे मन पर प्रभाव करती हैं। इसीलिए मन नियंत्रण में नहीं रहता। कभी कभी लोग भक्तों से पूछते हैं आप कैसे इतने शांत रह सकते हैं, क्योंकि भक्तों का आहार, क्या खाते हैं, क्या देखते हैं, क्या कैसे रहते हैं, ये सब भगवान की भक्ति के लिए। मन नियंत्रण में रहता है। ये जान लीजिए कि मन को नियंत्रण में रखना बड़ा कठिन है। अर्जुन ने भगवान से कह दिया, भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन मन को नियंत्रण में करो। अर्जुन ने कहा क्या कह दिया आपने, आप मुझे आदेश दीजिए, अपने तीरों से मैं चलती हुई हवा को रोक सकता हूं लेकिन मन को वश में नहीं कर सकता। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़म। बहुत चंचल है मन, इसीलिए मैं वश में नहीं कर सकता। तो वो अर्जुन, उस समय का अर्जुन, धनुर्धारी, पृथ्वी का सबसे श्रेष्ठ योद्धा, वो कहता है मैं मन को वश में नहीं कर सकता। भगवान उसको कहते हैं असंचय महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम। अर्जुन जो तुम कह रहे हो एकदम ठीक है, असंशय कोई संशय नहीं है, मन को वश में करना बहुत कठिन है, लेकिन मेरी बात सुनो, दो चीजें करो अर्जुन, केवल इन दो चीजों को करोगे मन वश में आ जाएगा। क्या करना है? भगवान कहते हैं अभ्यासे न तु कौन्तेय वैराग्ये न चिगुह्यते। अभ्यास करो किन्हीं चीजों का और किन्हीं चीजों से वैराग्य लो, बस मन को वश में करना बड़ा सरल हो जाएगा। और भगवान कहते हैं कि जिसने मन को वश में कर लिया, जितात्मनः प्रशांतस्य, जिसने मन को वश में कर लिया उसके लिए परमात्मा को प्राप्त करना कोई कठिन नहीं है। परमात्मा समाहितः, उसने प्राप्त कर लिया परमात्मा को अगर मन को वश में कर लिया। और आप सब जानते मन वश में नहीं रहता, आज भी अभी भी इस समय आप सब बैठे हैं लेकिन ये निश्चित है कि आपका मन यहां नहीं है, आपका मन कहीं होगा। कल क्या करना है, वहां क्या जाना है, वापस जाके क्या करना है, मेरे घर से चिट्ठी आई है, मेरे पिताजी बीमार हैं, इत्यादि इत्यादि मन सब घूम रहा है, यहां नहीं है। इसीलिए मन को वश में करने के लिए भगवान कहते हैं अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या है? श्रील प्रभुपाद समझाते हैं इन दो चीजों को। वो कहते हैं कि अभ्यास केवल भगवान के नाम के उच्चारण का अभ्यास करना, हमें बारंबार, क्योंकि यही बचाएगा। मान लीजिए अचानक कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं आपके जीवन में, तो अगर नाम ही तो पुकार सकेंगे। कोई कहते हैं कि आप ध्यान कीजिए, अरे सामने मृत्यु आ रही होगी तो कौन बैठकर ओम शांति शांति करेंगे, मुख से चिल्लाकर बुलाएंगे भगवान को हरे कृष्णा। इसलिए बारंबार इसका अभ्यास, भक्त जो होते हैं वो हर चीज में इसका अभ्यास कर लेते हैं। फोन उठाते हैं हरे कृष्णा कहते हैं, किसी से मिलते हैं हरे कृष्णा कहते हैं, कुछ लिखते हैं हरे कृष्णा कहते हैं, अभ्यास हो जाता है। इसीलिए भगवान के नाम को लेने का अभ्यास कीजिए। दूसरी चीज वैराग्य। वैराग्य क्या है? अब जब हम वैराग्य सुनते हैं तो पता चलता है कोई हिमालय में चले जाएं, हिमालय में जाकर जटाएं वटाएं बनाकर वहां पर बैठ जाएं, वही वैरागी है, है ना? वैरागी शब्द सुनते ही एक ही चित्र सामने आता है, एक योगी बैठे हुए हिमालय में। वैराग्य वो नहीं है। दरअसल कभी कभी वो फल्गु झूठा वैराग्य होता है कि हम हिमालय में बैठे हैं, और हिमालय में बैठकर भी हम आपको एक घटना बताते हैं। हमारे भक्त, इस संस्था के भक्त एक समय हिमालय गए थे, तो वहां वो किसी साधु से मिलने चले गए, थोड़े से भक्त। तो साधु बैठे हैं, साधु बाबा या जो भी वहां पर, तो वो कहते हैं उनसे जब पूछने गए वहां पर, जब मिलने के लिए गए तो उनसे पूछा कि वो साधु पूछने लगे, वो कहने लगे वो जो बगल वाले गुफा में साधु रहता है ना उसके पास नहीं जाना। तो भक्तों ने कहा क्यों? अरे नहीं, वो बहुत बेकार साधु है, उसके पास नहीं जाना। तो भक्त सोच रहे थे कि हिमालय में बैठकर भी हृदय से ये द्वेष की भावना नहीं गई तो क्या लाभ है हिमालय में आकर, ये कौन सा वैराग्य है। हम अपना उदाहरण देते हैं, हम लोग गए थे कुछ समय पहले बद्रीनाथ, तो हम लोग गए गंगोत्री यमुनोत्री इत्यादि जगह। तो जब बद्रीनाथ गए थे तो वहां हमने सोचा कि किसी तो कोई तो एक योगी मिलना चाहिए, बड़ा सुना है हिमालय में योगी होते हैं, तो एक मिल गए। उस समय वहां पर -6 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था, सब लोग 2-3 स्वेटर शॉल मफलर पता नहीं क्या क्या ग्लव सब पहनकर घूम रहे थे, और ये बाबा जी ये योगी बिना कुछ कपड़े पहने केवल शरीर पर राख लगाए बैठे हुए थे गुफा में। तो हमने सोचा कि पूछना चाहिए भाई क्या रहस्य है, कुछ पता चले। तो हम गए उनसे बात करने के लिए, हमने उनसे पूछा, तो बात कर रहे थे और हम लोग चाइना बॉर्डर पर थे, वहां पर एक बहुत बड़ा बोर्ड भारत की सरकार ने लगा के रखा है, ये भारत की सीमा की अंतिम चाय की दुकान है, बताइए। वहां पर बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, चाइना की सीमा शुरू होने वाली है तो चाय की दुकान अंतिम वहां पर है। मतलब इसके आगे जाना है तो चाय पी के चले जाओ, आगे चाय नहीं मिलेगी, पता नहीं चाइना में क्या कॉकरोच वगैरह खाने को मिलेंगे, इसीलिए वो पहले से बता देते हैं। तो वहां पर हम लोग थे, तो हम जब उनसे बात कर रहे थे तो ये कहने लगे, हम ऐसे ही पूछ रहे थे आप ऐसे कैसे रहते हैं, तो बता रहे हम बाल योगी हैं। हमने उनसे पूछा आप कभी नीचे नहीं जाते हैं, तो उन्होंने कहा हम कुंभ मेला में जाते हैं। हमने कहा आपको पता कैसे चलता है, यहाँ तो कैलेंडर नहीं, टीवी नहीं, कुछ नहीं, आपको कैसे पता चलता है? ओए बाबा को सब पता चलता है। हमने कहा अच्छा। फिर वो कहने लगे ये जो सैनिक देख रहे हो ना, हमने कहा हाँ, ये सब जाते हैं बॉर्डर पर, और अगर हमसे आशीर्वाद लेकर जाते तभी बचते हैं, नहीं तो नहीं बचते। हमने कहा अच्छा, सब आपसे आशीर्वाद लेकर जाते? बोले हाँ, हमसे आशीर्वाद लेकर जाते हैं। तो हम देख रहे थे कि भले ही उनके अंदर कुछ शक्ति आ गई हो थोड़ी बहुत तपस्या करके, जैसे वो इतने ठंड में बैठ सकते हैं, लेकिन हृदय से अहंकार नहीं गया। आज भी वो अहंकार बना हुआ कि हमारे कारण ये सैनिक बच जाते हैं, हम सब कुछ जानते हैं। तो इसीलिए मन को वश में करना बड़ा कठिन है। तत् वैराग्य क्या है, प्रभुपाद समझाते हैं, सरल है वैराग्य, केवल चार चीजों से वैराग्य ले लेना है, और वो बहुत कठिन नहीं है। कौन सी चीजें हैं? मांसाहार नहीं करना, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संग नहीं करना। बट सरल, कौन सी बड़ी बात है? ये चार चीजें करने में कोई कठिनाई है? कि चार चीजें छोड़ने में कोई कठिनाई है? शराब से क्या होता है? केवल लीवर खराब होता है और कुछ नहीं होता है, और पीने वाला भी हमेशा एडिक्ट रहता है, उसका परिवार भी हमेशा दुखी रहता है। मांस से क्या होता है? शरीर खराब होता है, क्योंकि हमारा शरीर मांस के लिए बना नहीं है। अगर आप में से कोई विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो अध्ययन कीजिए, रिसर्च कीजिए। हमारा शरीर घास खाने वाले प्राणियों की तरह है, मांस खाने वाले प्राणियों की तरह नहीं है। और जुआ खेलने से आप सब जानते हैं सारा पैसा डूब जाता है। तो इसीलिए भगवान कहते, तो तीन चीजों का हम वर्णन कर रहे थे, वेश, आहार और निवास। तो हमारा वेश कैसा हो? सादा सरल। निवास कैसा हो? भगवान की भक्तिमय। और आहार कैसा हो? वो आहार हो जो हमें भगवान का स्मरण दिला सके। आप जो भी आहार खाते हैं, भगवत गीता में भगवान कहते हैं उसमें कर्म होता है। तीसरे अध्याय में भगवत गीता के भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुच्यंते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा। अगर आप भगवान को अर्पण नहीं कर रहे तो उसमें कर्म भरा हुआ है और उस कर्म को खा रहे हैं, इसीलिए भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए। तो आप जीवन में इन तीन चीजों का ध्यान रखिए। आपका वेश आपके चरित्र को दिखलाता है, आपका आहार आपके चरित्र को दिखलाता है, आपका आचरण आपके चरित्र को दिखलाता है, और ये चरित्र है जो आपको बनाता है। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि बड़ा भक्तिमय हो, सरल हो जीवन हमारा। और चरित्र की बात जब आती है तो उदाहरण है इतिहास में कि लोगों के कितने महान चरित्र थे। आप सबने शकुंतला की कथा सुनी है, नाम सुना है शकुंतला का? राजा दुष्यंत ये वन में पहुंचे और अकेले हो गए, एक आश्रम में चले गए, सोचा कोई कोई वहां पर ऋषि मुनि होंगे। दरवाजा खटखटा दिया, पता नहीं दरवाजा था कि नहीं, क्या जो भी, पुकारा उन्होंने, कोई है कोई है, तो बड़ी सुंदर युवती शकुंतला बाहर आई। राजा ने आशा नहीं की थी, उसने सोचा कोई सन्यासी, कोई ऋषि, कोई साधु आएंगे, लेकिन अचानक इतनी सुंदर। और जैसे ही राजा ने देखा, राजा के हृदय में उससे विवाह करने की इच्छा हो गई। राजा ने उससे पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं ये ऋषि की पुत्री हूं। राजा ने कहा हो ही नहीं सकता। अब देखिए, राजा दुष्यंत को ये नहीं पता था वो कौन है, कहाँ रहती है, अचानक मिली, लेकिन राजा ने कहा ये हो नहीं सकता कि तुम किसी ऋषि की पुत्री हो। तो वह हैरान हो गई। उसने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि मेरे मन में, राजा दुष्यंत कहते, क्योंकि मेरे मन में आपसे विवाह करने की इच्छा आई है, ये प्रमाण है कि आप केवल क्षत्रिय हो सकते हो, आप ब्राह्मण हो ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे मन में किसी ब्राह्मण स्त्री के प्रति कोई गलत विचार आ ही नहीं सकता, विवाह का विचार। ये राजा दुष्यंत का चरित्र था, इतना उनको विश्वास था अपने चरित्र पर। और सही में शकुंतला ये एक क्षत्रिय की पुत्री थी, ये किसी ऋषि की पुत्री नहीं थी। दूसरा उदाहरण हम लोग महाभारत में देखते हैं, द्रौपदी। अर्जुन ने जीत लिया द्रौपदी को, अब लेकर आए हैं, माता से कहा कि हम देखो क्या लाए हैं आज भिक्षा में। माता ने कहा जो भी लाए आपस में बांट लो, देखा भी नहीं। और फिर जब पता चला, रे रही तो क्या गलत हो गया। युधिष्ठिर से बात हुई, क्या किया जाए, ऐसा कह दिया वैसा कह दिया। युधिष्ठिर के मुख से निकला कि ये द्रौपदी हम पांचों से विवाह करेगी। क्या अनर्थ कर दिया, क्या कह रहे हो, ये हो कैसे सकता है, कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं कि एक एक स्त्री पांच पांच पतियों से विवाह करे, ये तो अनर्थ है, अधर्म है। युधिष्ठिर ने कहा अगर मेरे मुख से निकला है तो ये धर्म है, मेरे मुख से कोई असत्य बात निकल ही नहीं सकती। इतना विश्वास था युधिष्ठिर को अपने ऊपर, ये चरित्र है। तो इसीलिए हमारा वेश, हमारा निवास, हमारा आहार हमें भगवान की ओर ले जा सकता है, अगर हमारा आचरण अच्छा हो, हम उसको शुद्ध रखें। आहार शुद्ध कीजिए, मन शुद्ध हो जाएगा, मन शुद्ध रहेगा चेतना शुद्ध होगी, चेतना शुद्ध होगी जीवन में सफलता अपने आप आएगी। तो मंदोदरी को पहचान गई कि ये तो हो नहीं सकती सीता, अब ढूंढ रहे हैं हनुमान जी सब जगह, और ढूंढने लगे और कहीं नहीं मिली, बहुत ढूंढ लिया, सब स्त्रियों को देख रहे हैं। और कभी एक बार तो हनुमान जी के मन में आ गया, मैं क्या कर रहा हूं, अरे मैं ब्रह्मचारी हूं। एक ब्रह्मचारी को स्त्रियों को नहीं देखना चाहिए, और मैं यहां रात्रि के समय, और ऐसे जो स्त्रियां सोई हुई हैं जिनके कपड़े भी ठीक से नहीं हैं, वो नशे में धुत हैं, ऐसे ही पड़ी हुई हैं इधर उधर, उनको मैं जाके उनकी शक्ल देख रहा हूं, ये है कैसी था, ये है कैसी था, ये है कैसी था। तो हनुमान जी के मन में मैं क्या कर रहा हूं, सही है कि नहीं है, ये तो मैं गलत कर रहा हूं। लेकिन फिर हनुमान जी के मन में आया कि नहीं, मैं जब ये सेवा कर रहा हूं, मैं जब ये चीजें कर रहा हूं, मेरे मन में कोई खोट नहीं आई इन स्त्रियों को देखकर, ये प्रमाण है कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं। अर्थात अगर हम केवल भगवान की सेवा हेतु कोई कार्य करते हैं तो बाहरी दृष्टि से जो कार्य गलत भी दिखता है लेकिन वो चेतना की दृष्टि से शुद्ध होता है। हनुमान जी के मन में कोई खोट नहीं थी और इसलिए हनुमान जी ने जारी रखी अपनी सेवा। हनुमान जी कर रहे हैं सेवा, ढूंढ रहे हैं सीता को, सब जगह घूमा, पूरी छानमारी नहीं मिली। हनुमान जी ने सोचा कि लगता है सीता मर गई, मैंने पूरी लंका को ढूंढ लिया, सीता नहीं मिली, लगता है। वो सोचने लगे संपाती ने कहा तो था कि सीता यहां है लेकिन सीता तो यहां नहीं है, हो सकता है जब रावण लेकर आ रहा होगा आकाश मार्ग से तो वो कूद गई होंगी समुद्र में, या गिर गई होंगी समुद्र में, हवा में तेज आ रहा था तो गिर गई होंगी, या फिर हो सकता है कि रावण के इतने अत्याचार को सहन नहीं कर पाई, उन्होंने मृत्यु को स्वीकार कर लिया होगा। तो ऐसे कई विचार उसके मन में आने लगे। तो हनुमान जी सोचने लगे अब मैं वापस कैसे जाऊंगा, अरे वापस अगर चला गया और जाके मैंने ये सूचना दे दी भगवान श्री राम को कि सीता देवी मर गई हैं, तो श्री राम तो अपना देह त्याग देंगे, इतना प्रेम करते हैं सीता देवी से कि वो जीवित नहीं रहेंगे। और अगर श्री राम अपना देह त्यागेंगे तो क्या लक्ष्मण जीवित रहेंगे, वो भी मर जाएंगे। उनको देखकर सुग्रीव मर जाएंगे, सुग्रीव को देखकर अंगद मर जाएंगे, अंगद को देखकर ये सूचना जब भरत को पहुंचेगी कि रामचंद्र जी ने अपना देह त्याग दिया तो भरत मर जाएंगे, शत्रुघ्न मर जाएंगे, तीनों माताएं सारा चिंता करने लगे हनुमान जी। और फिर हनुमान जी कहते हैं ये सारे कांड का जिम्मेदार मैं होऊंगा क्योंकि मैं अपने कार्य कर नहीं पाया। देखिए ये भक्त है जो सारी अच्छी चीजों का श्रेय भगवान को देते हैं, लेकिन अगर कहीं विफलता आती है, असफल होते हैं, तो उसका जिम्मेदारी भार अपने ऊपर लेते हैं। वो भगवान को दोष नहीं देते, दोष अपने ऊपर, लेकिन श्रेय भगवान को। ये भक्त है। हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो जाता है तो हम कहते हैं अपने बल पर किया है हमने, कितनी पढ़ाई की थी मैंने पता है। और अगर कहीं कुछ गलत हो जाता है सीधे भगवान को दोष, कितने नारियल फोड़े आपके मंदिर में आकर, क्या लाभ हुआ, यही दिन दिखाया आपने, सीधे भगवान को दोष देते हैं। हमें दोष भगवान को देना नहीं है, हमें अपने आप को दोष देना चाहिए। जैसे भरत का उदाहरण है, भरत का बहुत सुंदर उदाहरण है। जब भरत वापस आए और भरत को पता चला कि मेरी माँ ने ये क्या कर दिया, वो तो मारना चाहते थे लेकिन स्त्री थी, उन्हें पता था अगर मैंने मारा तो श्री राम प्रसन्न नहीं होंगे कि मैंने स्त्री का वध कर दिया, इसीलिए छोड़ दिया। शत्रुघ्न मंथरा को बालों से खींचता हुआ लेकर आया, शत्रुघ्न को भी बहुत क्रोध था, बालों से खींचता हुआ लाया भरत के सामने, वो चिल्ला रही है मंत्रा बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचा नहीं रहा है क्योंकि सब मंत्रा को मरना हुआ देखते चाहते थे कि मरे ये स्त्री, इसके कारण रामचंद्र जी गए। बालों से खींच कर ला रहे हैं, भरत के सामने लाए और उसको मारना शुरू किया बहुत गुस्से में। अब शत्रुघ्न भी बड़े शक्तिशाली थे, वो जब मारने लगे तो मंत्रा की तो हाय हाय निकलने लगी, भरत ने रोक दिया। भरत ने कहा नहीं, श्री रामचंद्र प्रसन्न नहीं होंगे अगर तुम एक स्त्री को मारोगे। और फिर भरत बहुत सुंदर बात कहते हैं, ये भक्त हैं, ये भाव हमारा होना चाहिए। भरत कहते हैं न मंथरस्य न च मातरस्य दोषो न राजन न च राघवस्य। वो कहते हैं कि आप लोग सोच रहे हैं कि ये मंत्रा का दोष है, तो मेरी बात सुनिए, न मंथरस्य, मंत्रा का इस पूरे कांड में कोई दोष नहीं है। अरे वो तो दासी है, और फिर दासी की क्या चेतना होगी, इसलिए उसका कोई दोष नहीं है। तो लोगों ने कहा ठीक है भरत मान लेते हैं मंत्रा का दोष नहीं है, तो फिर तुम्हारी माँ का दोष है, कहकर उसने सुना क्यों। तो भरत कहते हैं न मंथरस्य न च मातरस्य, माता का भी कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं है, अरे उसने अपने ही पति को मार दिया, अपने ही पति को इतना दुख दिया, कष्ट दिया। भरत कहते हैं वो तो माँ है, और माँ को तो अपने पुत्र के लिए सबसे अच्छी चीज चाहिए होती है, उसने माँ का कर्तव्य निभाया, इसीलिए न मंथरस्य न च मातरस्य दोषो न राजन। फिर लोगों ने पूछा फिर तो दशरथ महाराज का ही दोष है, उन्होंने सुना ही क्यों कैकेयी की बात, दो थप्पड़ लगाते उसको बोलते जाओ वापस नहीं दूंगा, है ना, जैसे कैकेयी के पिताजी ने किया था। जिस समय कैकेयी ने ये मांग लिया, सुमंत्र ने कैकेयी का इतिहास सुनाया था कि कैकेयी तुम अपनी मां की तरह हो, तो क्या मां की तरह हो, उन्होंने इतिहास सुनाया कि जब तुम्हारे पिताजी को एक ऋषि ने वरदान दिया था कि वो पक्षियों की बात को समझ सकते हैं, पक्षियों की भाषा समझ सकते हैं, लेकिन उनसे कहा था कि किसी से बताना नहीं, अगर तुमने बताया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। एक समय तुम्हारे माता पिता दोनों बैठे हुए थे, तुम्हारे पिता बैठे थे, तुम्हारी माता थी, दो पक्षी कुछ बात कर रहे थे, पिताजी ने सुना और कुछ मजाक हुआ और वो जोर से हंस दिए, और जैसे ही हंसे तुम्हारी माता को बड़ा अपमान हो गया क्योंकि वहां और कोई नहीं था। तो तुम्हारी माता ने तुम्हारे पिता से पूछा आप हंसे क्यों, आप बताइए। अब वो कैसे बताएं, क्योंकि ऋषि ने कहा था बताओगे तो मर जाओगे। तो तो वो बता नहीं सके। उन्होंने कहा मैं बता नहीं, आपको तो बताना होगा। नहीं मैं बता नहीं सकता। बोले नहीं। तो उन्होंने कहा कि अंत में तुम्हारे पिता ने तुम्हारे माता से कहा कि देखो अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तुम्हारी माता ने कहा भले मर जाओ लेकिन मुझे बताओ। भले मर जाओ लेकिन मुझे बताओ क्यों हंसे। तो वो बता नहीं सके। तो वो उन्होंने नहीं, अगर तुरंत नहीं बताओगे तो मैं अभी छोड़कर चली जाऊंगी। पहले समय में ऐसे धमकियां दिया करती थी पत्नियां, अभी तो नहीं होता है ना, अभी तो पति देते हैं शायद ऐसी धमकियां। कलयुग है, पता नहीं कौन किसको धमकी देता है, कुछ पता नहीं। तो ये गए उस ऋषि के पास, क्योंकि अभी बड़े दुविधा में पड़ गए क्या करें। तो ऋषि को जाकर पूछा, महाराज क्या करूं, आपने कहा कि बताना नहीं किसको, और मेरी पत्नी कह रही है कि मर जाओ लेकिन मुझे बताओ, नहीं तो वो चली जाएगी। तो उस साधु ने कहा जाने दो उसको, चिंता मत करो, तुम अपने प्राण बचा के रखो। तो सुमंत्र ये कथा सुनाते हैं कि कैकेयी तुम तो अपनी माँ की तरह ही हो, वो भी मारने के लिए तैयार थी अपने पति को, तुम भी मारने के लिए तैयार। तो लोगों ने कहा फिर दोष महाराज का है, सुना क्यों कैकेयी का उन्होंने। तो भरत कहते दोषो न राजन, नहीं कोई दोष नहीं है पिता का, क्यों कर्तव्य बद्ध थे, उन्होंने वचन दिया था। और फिर ये तो रघुकुल है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये कैसे हो सकता था कि वो अपने वचन को पूरा नहीं करते। तो सब लोगों ने सोचा मंथरा की गलती नहीं, कैकेयी की गलती नहीं, दशरथ की गलती नहीं, तो फिर रामचंद्र जी की गलती है, उन्होंने माना ही क्यों, नहीं जाते। तो भरत कहते हैं दोषो न राजन न च राघवस्य, राघव की भी कोई गलती नहीं है, उन्होंने तो अपने पुत्र होने का कर्तव्य पूरा किया। तब सब लोग सोचने लगे कि भाई मंथरा की गलती नहीं, कैकेयी की गलती नहीं, राजा की गलती नहीं, रामचंद्र जी की गलती है किसकी। भरत कहते हैं मत पाप मासी, ये मेरे पाप हैं जिसके कारण वनम प्रवेशे रघुनंदनस्य, वन में प्रवेश करना पड़ा श्री रामचंद्र जी को, ये मेरे पाप है। देखिए ये भक्त है, उनको तो पता भी नहीं था लेकिन उन्होंने ये सारा दोष अपने ऊपर लिया, किसी का दोष नहीं है, मेरे पापों के कारण श्री रामचंद्र जी को इतने कष्ट सहने पड़ रहे हैं। तो इसी तरह हनुमान जी सोचने लगे। तो ये हमें सीखना चाहिए कि हम लोगों पर दूसरों पर दोष नहीं लगाएं। कभी कभी ऐसा होता है हम कुछ गलती करते हैं, कोई आकर पूछता है, कहते नहीं उसने किया, मैंने नहीं किया, तुरंत अपना दोष दूसरों पर लगा देते हैं। नहीं, दोष हमें स्वीकार करने चाहिए, और अगर कोई जीवन में अच्छी बात होती है उसका श्रेय भगवान को देना चाहिए। रामायण में, तुलसी रामायण में लिखा है कि भगवान को ऋषि मुनियों ने 14 स्थान दिए रहने के लिए। आप सब ने सुने होंगे, शायद पिछली बार जब राम कथा की थी हमने इसको वर्णन किया होगा। जब भगवान राम वन में आए तो ऋषि मुनियों से पूछ रहे थे, उन्होंने पूछ लिया मैं कहाँ रहूं, और ऋषि मुनियों ने कहा आप ये बताइए आप कहाँ नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो हम आपको स्थान देते हैं। तो 14 स्थान दिए कि आप इन स्थानों में रहिए, यह मानना चाहिए कि इन स्थानों में भगवान रहते हैं, और उनमें से एक स्थान है। ऋषि मुनि कहते हैं भगवान आप उनके हृदय में रहिए जो लोगों ने सारी सफलताओं का श्रेय आपको देना सीख लिया है और सारी असफलताओं का दोष अपने ऊपर लेना सीख लिया है, ऐसे व्यक्तियों के हृदय में आप रहिए। बहुत सुंदर 14 स्थान बताए थे भगवान राम के रहने में, जिनमें से पहला था उन लोगों के हृदय में रहिए जिन्होंने अपने कानों को समुद्र बना लिया है, जिसमें कृष्ण कथा राम कथा की नदियां पड़ती रहती हैं लेकिन समुद्र कभी नहीं कहता कि बस गेट बंद होने वाला है कथा बंद कीजिए, कभी नहीं कहता। दरअसल कथा ऐसे होनी चाहिए, एक बार करेंगे यहां पर रात भर कथा, है ना, कोई चिंता नहीं घर जाने की, यहां सारे वो बंद कर देंगे, कोई बाहर ही नहीं जा पाए, रात भर कथा चले, 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, रामचंद्र जी की कथा चल रही है, कीर्तन हो रहा है, कितना आनंद आएगा। जागरण होता है ना, जगराता करते हैं आप लोग, कभी गए हैं? उत्तर भारत के लोग हैं, थोड़ा तो किया होगा कभी किसी ने, नहीं किया? कितने लोगों ने जागरण में भाग लिया, हाथ ऊपर कीजिए, देखिए, अरे इतने सारे। चलिए, कौन है व्यवस्थापक, कोई है कि नहीं यहाँ पर? अगली बार रात भर करेंगे। हाँ, हो सकता है कि थोड़े समय आप लोग हों और बाद में केवल हम अकेले ही बोल रहे हों, बाकी सारे या तो चले जाएंगे या सो जाएंगे। तो खैर, उन लोगों ने जिन्होंने अपने कानों को समुद्र बना लिया है, जिसमें कृष्ण कथा की नदियां गिरती रहती हैं और वो कभी मना नहीं करते, ऐसे लोगों के हृदय में आप रहिए। बहुत सुंदर बात कही, सुनने में रुचि हो जिनके, उनके हृदय में आप रहिए। वो कहते हैं कि, दूसरा कहते हैं कि जिन्होंने अपनी आंखों को चातक पक्षी की तरह बना लिया। चातक पक्षी जानते हैं? चातक पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो केवल वर्षा ऋतु में जो जल गिरता है ऊपर से, उसी को ग्रहण करता है, है ना? और या फिर चंद्रमा को देखता है, चातक होता है ना, तो चंद्रमा की ओर देखता है। तो ये कहा जाता है कि वो देखता रहता है, जब बादलों से पानी गिरता है उसी को ग्रहण करता है, और वो भी कब? स्वाति नक्षत्र में, अर्थात पूरे वर्षा ऋतु में नहीं, केवल 15 दिन में स्वाति नक्षत्र में सीधे जब वर्षा का जल गिरता है तब लेता है, नहीं तो वो जल नहीं पीता, मर जाता है लेकिन जल दूसरा नहीं पीता। इसी तरह जिन्होंने अपनी आंखों को ऐसे बना लिया कि केवल भगवान के दर्शन, बाकी कुछ और इच्छा नहीं है। तो ऐसे 14 स्थान आगे बहुत सुंदर स्थान है, कभी और वर्णन करेंगे, लेकिन उनमें से एक ये था कि जो दोष अपने ऊपर लें और श्रेय आपको दें। इसीलिए हमारी आप सबसे विनती है कि आज से, अभी से भगवान को दोष देना बंद कीजिए, हृदय को शुद्ध कीजिए, अपने आप को एक उपहार के रूप में प्रस्तुत कीजिए भगवान के सामने। अगर सबसे अच्छी भेंट भगवान को देनी है, अपने आप को दे दीजिए। जैसे हम पिछले साल यहां शिवरात्रि पर आए थे, तब हम सुना रहे थे कि शिवजी बहुत दयालु हैं, उनका नाम है आशुतोष, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, गुस्सा भी बहुत जल्दी होते हैं, ये भी संभालिएगा, शिव जी को क्रोध भी बहुत जल्दी आता है। तो शिव जी आशुतोष हैं। अब एक बार एक चोर आया मंदिर में, तो यहां तो शिव जी अंदर बैठे हैं, वैसे जनरली मंदिर में बाहर शिवलिंग होता है, लोग दूध चढ़ाते हैं, कोई पत्ता चढ़ाते हैं इत्यादि, कोई पानी चढ़ाते हैं। तो आपने देखा होगा कि शिवलिंग के ऊपर हमेशा एक मटका रहता है, एक पात्र रहता है, उसमें छेद होता है और उसमें से दूध गिरता रहता है शिव जी के ऊपर, या पानी गिरता, दूध गिरता रहता है। तो ये चोर आया मंदिर में, इधर उधर देखा इसने, चोरी करने के लिए कुछ मिला नहीं। शिव जी तो वैसे ही वैरागी आदमी हैं, उनके क्या रहेगा। हाँ, लेकिन वो देते बहुत हैं, शिव जी से कोई आकर मांगता है कि मुझे थोड़ा धन दे दी, शिव जी तुरंत ले जाओ, हटो जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं जप कर रहा हूँ। कोई कहता है थोड़ा सा धन दीजिए, सोना दीजिए, शिव जी तो, रावण ने भी आकर मांगा, जिस समय पार्वती जी से विवाह हुआ, पार्वती जी इसको विवाह करके लाके शिव जी ने कहा तुम वो पेड़ के नीचे बैठ जाओ, मैं ये पेड़ के नीचे बैठता हूँ। पार्वती ने पूछा बेडरूम किधर है, बोले वो वाला पेड़ ले लो ना, और एक चाहिए, कितने पेड़, पेड़ों की कमी है। शिव जी तो पेड़ के नीचे बैठने वाले, उनको क्या जरूरत बेडरूम की या कौन से रूम की। पार्वती ने कहा मुझे तो पूरा महल चाहिए, मैं ऐसे नहीं रहने वाली, सब कुछ होना चाहिए। शिव जी ने कहा ठीक है, तथास्तु। बहुत सुंदर सोने का महल, पूरा सोने से बना हुआ, बहुत बड़ा, उसमें जितने बहुत सारे रूम्स, ये वो सब कुछ। पार्वती से अभी खुश, बोले खुश, तो चलो जाओ रहो अंदर, मैं तो पेड़ के नीचे बैठने वाला हूँ। पार्वती ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, गृह प्रवेश होना चाहिए। बोले गृह प्रवेश, हाँ तो ठीक है गृह प्रवेश करो, बुलाओ कोई ब्राह्मण को। बोले ऐसे नहीं पार्वती ने कहा, अरे शिव जी के घर का गृह प्रवेश है, कोई साधारण व्यक्ति आएगा? इस समय पृथ्वी पर सबसे अच्छे मंत्रों का उच्चारण करने वाले ब्राह्मण को बुलाइए। शिव जी ने कहा मैं तो एक ही को जानता हूं ऐसा व्यक्ति, जो बहुत अच्छे मंत्रों का उच्चारण करता है, कौन है? रावण। रावण ब्राह्मण कुल का था, ब्राह्मण का पुत्र था, हाँ था राक्षस, लेकिन जन्म तो ब्राह्मण से हुआ था और मंत्रों का उच्चारण बहुत अच्छा करता था। शिव जी ने कहा मैं तो एक ही व्यक्ति को जानता हूं, पार्वती ने कहा बुला। शिव जी ने बुलाया, रावण आए, रावण ने गृह प्रवेश करवाया शिव जी का, बहुत सुंदर मंत्र उच्चारण सब हो गया। अब गृह प्रवेश का समय आ गया तो शिव जी ने कहा ब्राह्मण से कि भाई रावण को की दक्षिणा दी जाती है, क्या दक्षिणा चाहिए तुम्हें, मांगो। और शिव जी कह रहे हैं ब्राह्मण रावण तो जो चाहे मांग सकता है। रावण ने कहा शिव जी आप तो वैरागी आदमी हैं, जीवन भर आप तो पेड़ के नीचे रहते हैं, जप करते हैं, राख लगा के घूमते हैं, आपको ये सोने के महल की क्या जरूरत है, ये तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ठीक है, तो आप दक्षिणा में ये महल दे दीजिए। शिव जी ने कहा तथास्तु। तो जिस घर का गृह प्रवेश हुआ था वो महल ही लेकर चला गया रावण, और फिर से वो उस पेड़ के नीचे पार्वती को कहा तुम अपना पेड़ चुन लो, आराम से बैठो। तो ये है हमारे शिव जी। तो ये आ गया चोर, आया, अब देख रहा है इधर उधर कुछ है ही नहीं चुराने के लिए, तो उसने देखा कि शिवलिंग के ऊपर वो जो पात्र लगा था मटका जैसा, वो सोने का था और उससे दूध गिर रहा था। तो उसने सोचा चलो ये उठा लेते हैं, बड़ा भारी भी होगा, सोने को बेचेंगे पैसा मिलेगा। लेकिन अब हाथ नहीं पहुंचे, वो बहुत ऊपर था, बड़ा प्रयास किया नहीं पहुंचा, तो क्या करे, इधर उधर देखा कोई स्टूल नहीं, कोई कुर्सी नहीं, तो शिवलिंग के ऊपर ही खड़ा हो गया। उसने देखा कि और कुछ है नहीं, स्टूल नहीं, और वैसे भी कोई है नहीं, पुजारी भी नहीं है, इधर उधर देखा, बोला अरे छोड़ो, शिवलिंग के ऊपर खड़ा हो गया। और शिवलिंग के ऊपर खड़ा होकर उसने अभी मटके को पकड़ा ही था उतारने के लिए कि शिव जी प्रकट हो गए। और शिव जी ने कहा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। अब चोर वो सोच रहे मटके को छोड़ू कि क्या करूं, ये शिव जी प्रसन्न क्यों होंगे मुझसे। तो उन्होंने पूछा भाई शिव जी आप क्यों प्रसन्न है मुझसे। शिव जी ने कहा कि देखो यहां मंदिर में लोग आते हैं, कोई पत्ते चला वो क्या बोलते हैं, वेल का पत्ता चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई पानी चढ़ाता है, तुमने तो अपने आप को चढ़ा दिया मेरे ऊपर, इससे बड़ी और क्या बात है, इसीलिए बहुत प्रसन्न हो तुम। तो ये हमारे भोले बाबा शिव जी ऐसे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो खैर बात हम लोग ये कर रहे थे कि हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम सारा श्रेय भगवान को दें। तो आप लोग अपने जीवन में इस चीज को पालन कीजिए कि हम जो भी हमारे जीवन में हो, अच्छी चीजें हो, उसका श्रेय भगवान को दें, कभी निंदा नहीं करें, कभी दोष नहीं दें। बुरी चीजें हो उसको अपने कर्मों का फल मानकर स्वीकार करें, सदैव प्रसन्न रहेंगे। हमें कारण नहीं पता होता इसीलिए हम चिंता में आ जाते हैं, इसीलिए सुखी रहने का मार्ग यही है कि भगवान को हर चीज का श्रेय दें और सारे दोष अपने ऊपर ले लें। तो हनुमान जी ने ये दिखलाया कि मेरे कारण ये होगा, और फिर हनुमान जी ने सोचा मुझे ढूंढना चाहिए। अब ढूंढने लगे सीता देवी को। आप लोगों की क्या इच्छा है, आज ही सीता देवी को खोज करवा दें या अगले साल? कितने लोग चाहते हैं आज ही सीता देवी मिल जाएं, अगले साल तक इंतजार में है? ओके, बहुत अच्छा, तब तो 12 बजे तक बैठना पड़ेगा, दरवाजा बंद हो तो फिर हमें मत बोलिएगा। नहीं इतना नहीं, थोड़ा सा समय लेंगे, क्योंकि उसके बाद आज फिर अभी भगवान का पुष्प अभिषेक होना है, तो इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे। हनुमान जी ने फिर ढूंढना शुरू किया कि नहीं यहीं कहीं होंगी सीता, मर नहीं सकती सीता। तो अब बहुत ढूंढा नहीं मिल रही हैं, अलग अलग जगह पर उन्होंने ढूंढ लिया। इतना बड़ा समुद्र वो पार करके आ गए थे और अब ये छोटा सा कार्य रह गया था सीता को ढूंढना, वो नहीं हो रहा था। देखिए हनुमान जी ने एक बहुत सुंदर बात है कि समुद्र को पार कर लिया, शक्ति किसकी थी? श्री रामचंद्र की। तुलसीदास जी एक जगह पर लिखते हैं सुंदरकांड के प्रारंभ में, वो कहते हैं कि जिसके ऊपर राम की कृपा हो जाए उसके लिए जो जहर है वो अमृत हो जाता है। कोई उदाहरण याद आता है आपको? जहर अमृत हो गया, मीराबाई। जहर पिया और क्या हुआ? कुछ नहीं। तो जिसके ऊपर राम की कृपा हो जाए उसके लिए जो जहर है वो अमृत हो जाता है, जो उसके शत्रु हैं वो मित्र हो जाते हैं, और वो जो सारा समुद्र है वो गाय के खुर में जितना पानी है उस उतना हो जाता है। गाय का खुर होता है ना, गाय जब चलती है तो उसके पैर से जो गड्ढा हो जाता है बस उसमें जितना पानी है उतना हो जाता है। यही बात भागवत में कही गई है, बहुत सुंदर श्लोक है। समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिवत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम नतेशा। भागवत कहता है उन लोगों के लिए जिन्होंने समर्पण कर दिया है भगवान को, समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम, उनके लिए ये भवाम बुधि, ये जो सारा भवसागर है, भवसागर मतलब ये 14 लोक हैं, इतने बड़े ब्रह्मांड हैं, हमारा कई जीवन है, ये सारा भवसागर, इतना बड़ा सागर, वत्स पदम, वत्स मतलब बछड़े के खुर, गाय भी नहीं, बछड़े के खुर के समान हो जाता है, इतना छोटा सा हो जाता है जिस पर भगवान की कृपा। और आप जान लीजिए जिस व्यक्ति पर भगवान की कृपा होती है उसको अकेले लाभ नहीं होता। हम लोग अपने परिवार को लाभ देना चाहते हैं, समाज को, राष्ट्र को लाभ देना चाहते हैं, तो क्या कार्य करें जिससे इन सबको लाभ हो? शास्त्रों में बड़ा सुंदर श्लोक दिया गया है, इसको सुनिए और तब आप निर्णय लीजिए कि कैसे आप अपने अपने परिवार को, अपने अपने कुल को आप पवित्र कर सकते हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम वसुंधरा वा वसती च धन्य नृत्यन्ति स्वर्गे पितरो च तेषां येषां कुले वैष्णव नाम घेयम्। बहुत सुंदर बात कही गई है। कुलम पवित्रम, उस व्यक्ति का कुल पवित्र हो जाता है। जननी कृतार्थम, उसकी जो मां है, जननी जन्म देने वाली, वो कृतार्थ हो जाती है, अर्थात उससे अच्छा उपहार उसको और कोई नहीं दे सकता। कुलम पवित्रम, अपने कुल को वो व्यक्ति पवित्र कर देता है। जननी कृतार्थम, अपनी माता को वो कृतार्थ कर देता है। वसुंधरा वा वसती च धन्य, वो वसुंधरा अर्थात वो पृथ्वी, वो वसती अर्थात वो स्थान जहां वो जन्म लेता है, वो धन्य हो जाती है। धन्य ही नहीं, वो वंश वर्णन करने योग्य, वो वंदनीय हो जाती है। लोग उसका वंदन करते हैं, उस भूमि का, उस पृथ्वी का। और नृत्यन्ति स्वर्गे पितरो चतेषाम, उनके जो पितर हैं, उनके जो पूर्वज हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, जिनको हम श्राद्ध के द्वारा बड़ा आनंद देना चाहते हैं, वे स्वर्ग में नृत्य करने लगते हैं। नृत्यन्ति स्वर्गे पितरो चतेषाम, किसके लिए कहा जा रहा है? किसका कुल पवित्र होता है? किसकी माता कृतार्थ होती है? कौन सी वसुंधरा और वसती धन्य होती है? किसके पितर नाचने लगते हैं? ये शाम कुले, जिस कुल में वैष्णव नाम घेयम, एक वैष्णव उत्पन्न होता है और वो भगवान के नाम को लेता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान के नाम की महिमा है। साधारण नहीं है भगवान का नाम, मुख पर आता नहीं है। बंबई में हमें एक भक्त बता रहे थे कि हॉस्पिटल में एक महिला अपना देह छोड़ने वाली है, मृत्यु के कगार पर है, उसको जाकर कान में उसके कहा जा रहा है भगवान का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, वो मुंह हिला रही है, बिल्कुल नहीं लूंगी, मरने वाली है, जरा सी शक्ति बची है, प्रयास कर रहे, अरे भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, बोले नहीं। तीन चार बार कह दिया तो उसने अपनी पूरी शक्ति लगा के कह दी नहीं लूंगी और मर गई। अभी नहीं लूंगी इतना कहने की शक्ति थी, कृष्ण नाम कहने की शक्ति भी तो होगी ना, लेकिन वो नहीं कहा। इसीलिए जान लीजिए ये नाम लेने के लिए भाग्य लगता है। आज आप लोग जो यहां बैठे हैं, तीन दिन से जो नाम सुन रहे हैं, आज आपने इतना नाम लिया भगवान का, भाग्यवान है आप। भले आप अपने भाग्य को नहीं समझते, भाग्य लगता है भगवान के नाम को सुनने के लिए, नाम को लेने के लिए। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति करें। तो हनुमान जी अब ढूंढ रहे हैं सीता को, छोड़ा नहीं उन्होंने अपनी सेवा को, सब जगह ढूंढने लगे, सीता नहीं मिल रही हैं, अशोक वाटिका में अभी तक नहीं गए थे हनुमान जी। अचानक पता नहीं कैसे उनसे वो दिखाई नहीं दी उनको अशोक वाटिका, तो अब वो अशोक वाटिका की ओर जाते हैं हनुमान जी, क्योंकि उन्होंने सोच लिया कि सीता को तो किसी तरह ढूंढना ही है, मैं वापस तो जाऊंगा नहीं, या तो मैं रावण को मार दूंगा नहीं तो रावण को पकड़ कर ले जाऊंगा रामचंद्र जी के पास। हनुमान जी बहुत कुछ सोच रहे थे क्या करना चाहिए। अब अशोक वाटिका में पहुंचते हैं, बहुत सुंदर वर्णन है उस अशोक वाटिका का, और फिर साथ ही साथ वे देखते हैं बहुत सी राक्षसियां वहां पर पहरा दे रही हैं। दो वर्णन है, एक वर्णन है कि रावण पहले आता है, दूसरा वर्णन है रावण बाद में आता है। खैर हम लोग रावण को पहले ले आते हैं। तो हनुमान जी ने देखा कि रावण आ रहा है, और रावण आकर फिर सीता से, तो हनुमान जी ऊपर बैठे देख रहे हैं, अब सीता से रावण बात कर रहा है, सीता विवाह कर लो मुझसे। सीता ने एक घास का तिनका बीच में रख दिया रावण और उसके बीच में। क्यों रखा घास का तिनका? ये एक नियम है, ये मर्यादा है, क्योंकि सीता देवी किसी दूसरे पुरुष से बात कर रही है, उनको बीच में, उनको कुछ तो वहां पर कुछ था नहीं, तो उन्होंने घास का तिनका रख दिया, मर्यादा का पालन कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो रावण को चेतावनी दे रही हैं कि रावण ये नहीं सोचना कि श्री रामचंद्र जी को आने के लिए समुद्र पार करना पड़ेगा, जिस तरह नरसिंह देव खंबा तोड़कर बाहर निकल गए थे, रामचंद्र जी इस तिनके में से बाहर निकलकर तुमको मार सकते हैं, इसीलिए घबराओ, डरो, बारंबार मुझे आकर ये मत कहो। या फिर दूसरी दृष्टि में एक आचार्य समझाते हैं कि सीता देवी रावण को कह रही थी कि रावण जिस दिन रामचंद्र जी आ गए ना, तुम्हारे सारे महल वहल को सब समाप्त कर देंगे, उस दिन के लिए घास का तिनका बचा कर रखो, क्योंकि उस दिन तुम्हें झोपड़ी बनाने के लिए काम में आएगी घास का, तुम्हारे पास कुछ रहेगा नहीं। तो ऐसे कई बातें आचार्यों ने समझाई कि क्यों घास का तिनका उन्होंने रख दिया, और सीता देवी ने कहा कि यह संभव नहीं है। रावण ने बहुत कहा, और फिर रावण क्रोध में हो गया, उसने अपना चंद्रहास खड़ग निकाल लिया सीता को मारने के लिए, और उसने कहा सीता मैं तुम्हें एक महीने का समय देता हूं, बस एक महीने के अंदर अगर तुमने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं आदेश देता हूं यहां उपस्थित जितनी भी राक्षसियां हैं, एक महीने के बाद इसको काटकर मुझे ब्रेकफास्ट में खिला देना। रावण खाता था, तो रावण ने कहा मैं काट कर खा जाऊंगा, एक महीने का समय है बस। अब हनुमान जी ऊपर सुन रहे हैं, आप सोचिए हनुमान जी को कितना गुस्सा आया होगा। हनुमान जी जो तेरी तो अभी नीचे उतर कर अभी गलम मोड़ देता हूं, हिम्मत कैसे हुई। लेकिन हनुमान जी शांत बैठे रहे। सीता देवी बड़ा शोक करने लगी। सीता देवी सोचने लगी कि ये कैसा है, ये समय कैसा है, और एक महीना, उनको अपनी मृत्यु का भय नहीं था, लेकिन उनको भय था कि एक महीना और कैसे मैं जीवित रहूं बिना श्री राम के। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि वो स्थान था जिसे अशोक वाटिका कहते थे, वहां बहुत सारे अशोक वृक्ष थे। अशोक मतलब जो शोक नहीं करते हैं, लेकिन वाल्मीकि लिखते हैं कि वो अशोक वृक्ष भी शोक करने लगे सीता देवी की स्थिति को देखकर कि हाय कैसी स्थिति है। उसको राक्षसियां समझाने लगी। एक राक्षसी थी त्रिजटा, उसने आकर कहा, सब राक्षसियों को हटा दिया, तुम जाओ 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 सब जाओ, उसने कहा सीता से, रोने लगी सीता देवी, बड़ी दुखी थी, तो सीता से कहा चिंता नहीं करना, मैंने एक स्वप्न देखा है। क्या देखा स्वप्न में? मैंने देखा लंका जल रही है। त्रिजटा कहते हैं मैंने देखा लंका जल रही है, एक वानर आ गया है और वो लंका को जला रहा है, ये मैंने स्वप्न में देख लिया है। और तो और मैंने देखा कि रावण, इसका सर शेव कर दिया गया है, उसको गधे पर बिठाया गया है और वो दक्षिण की ओर जा रहा है, मतलब उसकी मृत्यु होने वाली है। इसीलिए तुम ये जान लो सीता कि बहुत जल्दी तुम्हारे स्वामी श्री रामचंद्र यहाँ आएंगे, इसीलिए चिंता मत करो, अपने प्राण बनाए रखो, अपने प्राण दो मत। क्योंकि वो त्रिजटा से पूछ रही थी कि कैसे मैं अपने प्राण दे दूं, ये एक महीने तक रोज रोज ये रावण के मैं सहन नहीं कर पा रही हूं। त्रिजटा ने कहा थोड़ा समय और रामचंद्र जी आएंगे। ठीक है, अब ये सब हो गया, त्रिजटा चले गए, अब हनुमान जी को आना था। हनुमान जी ने तो ढूंढ लिया सीता को, अब यही सीता है। तो हनुमान जी एकदम प्रकट हो गए, कूदे सामने। जैसे ही आए तो हनुमान जी को देखा, सीता ने सोचा रावण है, क्योंकि रावण वेश बदल लेता था और कभी कभी बदल कर आता था सीता के सामने। तो सीता ने कहा तुम फिर आ गए? हनुमान जी ने कहा कि मेरा नाम हनुमान है, मैं श्री राम का दास हूं। सीता देवी ने श्री राम का नाम सुना, बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन विश्वास नहीं हुआ कि ये रावण नहीं है। कैसे मैं विश्वास कर लूं, क्या क्या चीज है तुम्हारे पास, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम राम, और कैसे आ गए इस लंका में तुम बिना किसी तकलीफ के, कष्ट के। तो उस समय श्री रामचंद्र जी की मुद्रिका हनुमान जी ने दी सीता देवी को। सीता देवी ने मुद्रिका देखी, जैसे ही उन्होंने मुद्रिका देखी उन्हें वो उंगली याद आई जिसमें भगवान श्री राम उस मुद्रिका को पहना करते हैं, उन्हें वो हाथ याद आया, उन्हें भगवान का सुंदर स्वरूप याद आया, और जितने कष्ट थे सीता के दूर हो गए। सीता मुस्कुराने लगी, सीता प्रसन्न हो गई केवल उस अंगूठी को देखकर जो हनुमान जी लाए थे। आचार्य बहुत महत्वपूर्ण बात समझाते हैं, हम सब सीता की तरह हैं, जिसे रावण ने इस लंका में, इस भौतिक जगत में बांध कर रखा हुआ है, और गुरु हनुमान जी हैं जो भगवान के धाम से आते हैं, भगवान जी ने भेजते हैं, और वो आकर क्या करते हैं, जैसे हनुमान जी ने मुद्रिका दी सीता देवी को, ऐसे ही गुरु हमें मंत्र प्रदान करते हैं। उस मंत्र के उच्चारण से, जैसे सीता ने केवल मुद्रिका को देखकर भगवान का स्मरण आ गया, उस मंत्र के उच्चारण से हमें हमारे इष्ट देव, हमारे भगवान और भगवान से अपने संबंध का स्मरण हो जाएगा। इसीलिए गुरु वो हैं जो भगवान के पास से आकर आपको केवल मंत्र देते हैं, प्रार्थना करते हैं आपसे कि इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, जिससे आप स्मरण कर सकें आपके असली स्वरूप का। इस जगत में हर जीव भगवान से संबंधित है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं जितने भी जीव हैं वो सब मेरे अंश हैं और मैं उनका पिता हूं। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति वा तासां ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदापिता। इसीलिए अपने पिता के पास जाना है, अपने पिता से संबंध को स्थापित करना है, तो हमें इस मंत्र को लेना चाहिए जो हमें गुरु प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अब सीता को ढूंढ लिया, सीता को विश्वास हो गया कि हनुमान जी भगवान श्री राम के पास से आए हैं, और अब श्री रामचंद्र जी का मधुर संदेश सीता को सुनाना है। रामचंद्र जी ने जब हनुमान जी को अपनी अंगूठी, अपनी मुद्रिका दी थी, तो एक संदेश भी दिया था कि जब मिलो सीता से तो ये संदेश सुनाना। तो क्या संदेश सुनाया, ये अगले साल की कथा में हम लोग सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जैसे हमने आज प्रारंभ से बातचीत की कि सीता की खोज प्रारंभ हुई, हनुमान जी मंदोदरी को देखकर समझने लगे यही सीता हैं, बड़े